ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हर बार जो हम आपको बताते हैं कि जो ज्ञान हमें मिला है जब हम इस तरह से प्रोग्राम में बैठ के बात करते हैं, आप सभी की ये बात हमारे पास आती है कि तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, तब तक तो लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम अपने लौकिक जिंदगी में जाते हैं, दुनिया में बाहर निकलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। और ऐसे में कितनी बार हमने ये देखा है कि हमारी बुद्धि जो है कई बार हमारा साथ नहीं देती है, और या फिर हमें बार बार इस बात का एहसास दिला देती है कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक है या वो हो सकता है। ऐसे में हमें सतमार्ग पर चलने के लिए और हर रोज का वो सूत्र देने के लिए बाबा के महावाक्य, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के वो वाक्य, वो अमृत की बूंदें मुरली के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, जिसके लिए सेंटर्स पर जाने के लिए कहा जाता है। तो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से भी हम मुरली के वो कुछ अंश लेकर आते हैं, खास खास विषय पर, जो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। आज एक बार फिर उसी दुनिया में आपको ले चलते हैं और हमारे साथ हैं सीनियर ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
फिर बहन आज मुरली के रेलेवेंस से ही बात करते हैं कि जो अभी हमने बात कही कि क्यों जरूरी है और किस तरह से मुरली सुनते हुए हमें कितनी बार अपने सवालों के जवाब जो कहीं ना कहीं लौकिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं वो भी परेशान कर रहे हों उसके जवाब भी मिल जाते हैं।
जी, मुरली में हमें बाबा सब प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। हमारे मन में जो भी बातें आती है वो भी बाबा बताते हैं और उस रूप से उनका उत्तर देते हैं। तो आज हम एक मुरली सुनेंगे बाबा की। बाबा कहते हैं, ये सार है मुरली का, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी और आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। अब इसमें ही कितना सार समाया हुआ है कि आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। क्यों बाबा को बार बार कहना पड़ता है आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो? क्योंकि देह अभिमान इतना पक्का हो गया है 63 जन्मों से, जो हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है। फिर आत्म अभिमानी बनने की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। क्योंकि ये विकारों के जो विचार भी आते हैं वो भी देह अभिमान के कारण ही आते हैं। जब हम आत्मा की स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे तो दृष्टि भी आत्मिक होगी, तो काम विकार भी खत्म हो जाएगा, फिर मन में शांति आएगी क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो क्रोध भी खत्म हो जाएगा।
एक बात और पूछना चाहती हूँ, बहुत से दर्शकों के भी ये सवाल है अब, क्योंकि बार बार सुनते हैं, बार बार की रिपीटेशन इवन प्रोग्राम के दौरान भी, कि मैं एक आत्मा हूँ। कई बार हम कहते तो जाते हैं अपने आप को, दिन भर कहेंगे, दिन भर हम उसे गुजरेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, इवन हम ओम शांति भी जब कहें, लेकिन हम उसे अनुभव में या व्यवहार में लाने में हमें क्या करना होता है? आत्माभिमानी बनना, मैं सोचूं तो सही बार बार कि आई एम अ सोल,
नहीं केवल ये नहीं सोचना आई एम अ सोल। अब जैसे मैं देख रही हूँ तो मैं उस समय क्या सोचूं, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, ये आंखें अलग है, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ तो मुख अलग है, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही तो कान अलग है, मैं अलग हूँ, आत्मा इस शरीर को धारण कर कर्म कर रही हूँ तो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, जैसे शरीर पर वस्त्र पड़े हैं अलग है ना मुझसे, तो मैं आत्मा भी शरीर से अलग हूँ, ये शरीर एक वस्त्र के समान है। तो ये प्रैक्टिस हमें बार बार करनी होगी, उठते बैठते चलते खाते पीते, हर कर्म में।
क्योंकि अभी क्या है, बिल्कुल आपने सही बात की कि जब हम एक बार वस्त्र पहन लें, सुबह हमने पहन लिए, हमें दिन भर वस्त्रों का ख्याल थोड़ा रहता है, हमें तो बाकी चीजों पर अपना ध्यान रहता है। तो सिमिलरली, लेकिन अभी हमें अपने वस्त्र पे ज्यादा ध्यान रहता है
जी,
और जो हमारा देह का जो वस्त्र है उस पे और उससे जुड़े हुए जितने कर्म है उन पर ज्यादा ध्यान रहता
जी,
है।
इसीलिए देह का भान मिटाने के लिए केवल कहने तक नहीं है, प्रैक्टिकल में वो अनुभव चाहिए। जैसे मैं देख रही हूँ तो सचमुच महसूस करूँ ये आंखें अलग है, मैं इनसे अलग आत्मा भ्रकुटी के मध्य से इन खिड़कियों से देख रही हूँ, फिर आत्मा को देख रही हूँ, ये भी अभ्यास जरूरी है। जब भी किसको देखो तो उनके मस्तक पर, उनकी भ्रकुटी पर आत्मा चमकती हुई हमें दिखाई दे, तो ये अभ्यास ही पुरुषार्थ है। जैसे बताया, तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे और बाप की याद भी रहेगी, क्योंकि आत्मा की स्थिति में ही परमात्मा की याद रहती है। देह अभिमान में परमात्मा की याद नहीं रहेगी, फिर आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। अभी वो तमो प्रधान जो स्थिति है उससे बदलकर सतो प्रधान स्थिति बनेगी। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। अभी अमरनाथ जाना है वो रास्ता तो पता है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, सब पता है, कौन सी फ्लाइट लेनी, कैसे लेनी, सब पता है, कौन सा रूट होता है, कहाँ है, लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता है जिसका मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते और वही ढूंढ रहे हैं
परमात्मा तक पहुंचने का।
बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं, बाप से मिलने का, यानी परमात्मा तक पहुंचने का, या कहो बाप से मिलने का, परमात्मा पिता है, या फिर जीवन मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता, क्योंकि जीवन में
बार बार हम ये
सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो उसका रास्ता चाहते तो है, रास्ता कौन सा है, ठीक है ना। तो बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते को किसी को भी पता नहीं। सिर्फ शांति शांति कहते रहते हैं, उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, परंतु ये तो जानते नहीं है कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई थी।
यहाँ शिलू बहन बिल्कुल मैं ये जानना चाहूंगी, शांति की जहाँ बात की, तो व्हेन वी आल्सो से कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ या आई एम अ पीसफुल सोल, ओम शांति हम कहते हैं कि मैं शांति स्वरूप हूँ, लेकिन शांति क्या? बिल्कुल बाबा सही सवाल हमसे भी पूछे, बहुत से लोगों के मन में भी है, शांति यानी मैं अकेले बैठ के चुपचाप किसी एक जगह पे बैठी हूँ तो वो शांति हो जाती है, वो भी शांत होती है। आपने एक बार कहा था कि नींद में है तब भी तो हम शांत होते हैं,
बिल्कुल
सो गए हैं तो हम शांत हो गए, तो किस शांति के बारे में?
शांति एक शक्ति के रूप में है। शांति इज नॉट एब्सेंस ऑफ वॉर, एब्सेंस ऑफ साउंड, एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, यू नो, पर शांति और पीस इज अ पॉजिटिव एनर्जी। तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी है तो उसका सोर्स भी है। अब हम जैसे प्रकाश कहते हैं तो प्रकाश का सोर्स है, तो प्रकाश की हम डेफिनेशन ये नहीं देंगे एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। लाइट इज एब्सेंस ऑफ डार्कनेस, नो, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द पावर ऑफ लाइट, यू नो द पावर ऑफ कमिंग फ्रॉम द सन, द रे कमिंग फ्रॉम द सन। सिमिलरली जब हम कहते हैं शांति तो ये आत्मा का स्वभाव है, जब मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूं तो मुझे शांति है, आत्मा की अनुभूति में हूं तो शांति है। तो इट इज अ एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ और द सोल। इसीलिए कहा ओम शांति, यानी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं लोग शांति शांति कहते तो रहते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, शांति मांगते भी हैं, पर कैसी होती है शांति, क्या होता है, किसको चाहिए शांति, ये भी जरूरी है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं थॉट्स की जो, कई बार क्या होता है आप चुपचाप बैठे होते हैं, चुपचाप हम बैठ जाते हैं सन्नाटे में जाके, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस प्रॉब्लम चलती जाती है, दिमाग में कुछ 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 चलता रहता है, तो वो शांति तो नहीं हुई,
वो भी तो शांति नहीं हुई,
लेकिन हम मान लेते कि मैं तो चुप ही बैठा था, मैं तो शांत बैठी थी।
तो शांति माना ये आत्मा का स्वधर्म, अब उस स्वधर्म में मुझे टिकना है, उसके लिए आत्मा की अनुभूति करनी है, फिर आत्मा जिस धाम की वासी है उस धाम को भी याद करना है, जो शांति धाम है मुझे आत्मा का, तो वो शांति हो गई, फिर आत्मा जिस पिता की संतान है वो शांति का सागर है उसको याद करना है, तब शांति अनुभव होगी। तो आत्मा का स्वधर्म शांति, आत्मा का धाम शांति धाम, आत्मा का पिता शांति का सागर, तब शांति अनुभव होगी, ये बाबा कहते हैं। तो तुम पूछ सकते हो, आप विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति कभी देखी है? कई समझते ना कि हमें मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण में आए ही नहीं तब शांति होगी, फिर कई कहते नहीं हमें तो विश्व में शांति चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनसे पूछो विश्व में शांति कभी देखी है? विश्व में शांति कभी होती है, विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, फिर ये उनको हम बताएं, क्योंकि कई समय से विश्व में तो शांति हो ही नहीं सकती, यहाँ तक मान लेते हैं, समझते हैं कि जब कृष्ण था तो कंस भी था, राम था तो रावण भी था, जब देव थे तो असुर भी थे, तो सदा ही लड़ाई झगड़े मारामारी चलते ही आ रही है। शिव बाबा कहते नहीं, जब श्री कृष्ण था तो कंस नहीं था, जब श्री राम था तो रावण नहीं था, रावण कंस ये आसुरी वृत्तियों के ही दूसरे नाम है, कृष्ण श्री राम ये तो देवताओं के नाम है। तो इसलिए जब ये देव भूमि थी, वो सतयुग त्रेता का समय था, तब विश्व में शांति थी, अशांति का नाम निशान नहीं था। फिर द्वापर युग से रावण अर्थात विकारों की प्रवेशता हुई, तब दुख शुरू हुआ। तो भी बाबा कहते हैं विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, अभी हो रही है, अभी समय है स्थापन होने का, और शिव बाबा उसकी स्थापना कर रहे हैं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि पहले पहले ये दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं,
बिल्कुल यहाँ
एक हम भाई भाई को देखते हैं
कि हम एक आत्मा है और भाई भाई को देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा जब हम आत्मिक स्वरूप में देखते हैं एक दूसरे को, तो वो मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है।
तो भाई भाई की दृष्टि हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी दृष्टि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों यानी आत्माओं को देखता हूँ, तो परमात्मा भी आत्माओं को देखते हैं, हम भी अभ्यास डालें कि हम आत्माओं को देखें। आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है, आत्मा का तख्त है ये भ्रकुटी, इसको कहेंगे अकाल तख्त, है ना, जैसे वो अमृतसर में अकाल तख्त दिखाते ना, तो ये आत्मा का अकाल तख्त, यानी तख्त तो काल खा जाएगा, लेकिन अकाल आत्मा है जिसके बैठने का ये स्थान है।
श्रीबेन यहाँ पे रूहानी पिता की रूहानी जो बच्चों की बात जो है, रूहानी यानी रूह से जुड़े हुए
जी,
आत्मा से जुड़े,
जिसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं, तो स्पिरिट से जुड़ा हुआ।
यहाँ एक और बात अभी तक बहुत से लोगों के मन में आती है कि जब मेरा रूहानी पिता के साथ रिश्ता जुड़ जाता है तो मेरे लौकिक पिता या लौकिक रिश्तों का मैं क्या करूं, क्योंकि वहां वो बैलेंस बनना बंद हो जाता है। और बहुत बार इसीलिए कहा जाता है कि जब ब्रह्मा कुमारी जाते हैं तो जो लोग हैं अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और रूहानी पिता की तरफ ही रूहानी बाप को ही अपना मानने लगते हैं। तो ये बैलेंस जो बनाना है, नहीं ये मैं चाहती हूँ कि आप आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आज जो कड़ी हमारे साथ में है कि क्या बाबा भी क्या कहते हैं इसके बारे में कि अपना रिश्ता लौकिक, अपने जो जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके अपने हैं, उनके साथ कैसा रखें, और ये जो रूहानी बाप के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको भी कायम।
लौकिक रिश्ते तो हैं ही, क्योंकि ये लौकिक रिश्ते बिना हम कहाँ होते, माता पिता हैं तभी तो ये शरीर है, ये जीवन मिला है, लेकिन इन लौकिक माता पिता को जानते हैं हम, परंतु जो आत्माओं का परम पिता है उसको हम जानते ही नहीं है, इसलिए उसकी पहचान होना जरूरी है। और ये दोनों ही साथ साथ है ना, बाबा तो कहते हैं कि लौकिक के साथ भी तो निभाओ, लौकिक की भी सेवा करो, यहाँ तक बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने घर वालों की सेवा करो, घर वालों की सेवा की फिर दुनिया वालों की सेवा करो, परंतु घर वालों की भी रूहानी सेवा जरूर करो, केवल जिस्मानी सेवा समझते यही सेवा है, पर रूहानी सेवा भी जरूरी है, क्योंकि जब रूहानी सेवा यानी आत्मा की सेवा करेंगे तब हमारी दृष्टि उसमें भी पक्की हो जाएगी कि ये भी एक आत्मा है। नहीं तो अगर केवल जिस्मानी दृष्टि ही रहेगी तो फिर ये सारे विकार आ जाते, इसलिए उनमें भी रूहानी दृष्टि रहे तब तो उन संबंधों में रहते हुए भी हम न्यारा और प्यारा रह सकेंगे।
बिल्कुल, ये हम क्योंकि हम कई बार ये बात करते हैं, अपने सभी दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। जब भाई रिश्तेदारों के लिए या अपने जो मेरे लोग हैं उनके लिए मैं अलग सोच रखूंगा, अपने लिए अलग सोच रखूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि जो कार्मिक अकाउंट्स मेरे यहाँ हैं, जो रिश्ते हैं उनमें भी अगर मैं रूहानी जो आपने कहा दृष्टि रखूं, तो वो ज्यादा बेहतर उस पर पहुंच पाएंगे
और उनसे संबंध और अच्छा हो जाएगा। और ही हमने देखा है अगर केवल जिस्मानी संबंध है ना तो उसमें अटैचमेंट भी आएगा, फिर नफरत भी आएगी, वेर भी आएगा, दुश्मनी भी, सब सारे विकार आ जाएंगे। और अगर उनमें आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो और ही आत्मिक स्नेह पैदा होगा, एक दो के नजदीक आएंगे, एक दो के गुण देखेंगे, प्रेम बढ़ेगा, ये सारे और ही पॉजिटिव अनुभूतियां होगी।
बिल्कुल, और एक पॉजिटिवनेस जो होती है कई बार, खासकर अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो है कि बच्चों को अपनी एक्सटेंशन मान देते हैं, वहां परिवर्तन जो है वो बहुत जरूरी
है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हैं पर ये भी जैसे शिव बाबा के बच्चे हैं। हाँ, मुझे मिले हैं, शिव बाबा ने दिए हैं, ये अमानत है, बाबा की अमानत है, मैं मुझे ये कार्य मिला है इनकी पालना करने का, पर है ये शिव बाबा के बच्चे, तो इस प्रकार से उनकी पालना भी करेंगे और साथ साथ उन्हें आत्मिक स्नेह भी देंगे और बाबा की समझेंगे अमानत तो बाबा की याद भी रहेगी। बाबा यही हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे छोड़ो कहीं नहीं, छोड़ो कुछ नहीं,
हाँ, कुछ नहीं।
बिल्कुल, हम कोई सन्यासी थोड़ी है, हम कोई सन्यासी के रूप में नहीं जो सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाते, घर गृहस्थ में रहना है, तो छोड़ो भी कुछ नहीं, परंतु ऐसी कला आ जाए जो फंसो भी कहीं नहीं। क्योंकि पोजेसिवनेस भी तो फंसना ही हुआ ना, अधिकार रखना ये भी तो फंसना ही हुआ। क्योंकि अगर मान लो हम छोड़ भी देते हैं पर हमारा कार्मिक अकाउंट है उनके साथ, तो वो जरूर पीछा करेगा, तो कैसे छोड़
नहीं,
नहीं
सकते। इतना प्यारा अकाउंट है, जब भी पेरेंट्स और बच्चों का अकाउंट जो होता है, या पति पत्नी का भी अकाउंट है, भाई बहन का अकाउंट, बहुत सुंदर अकाउंट होता है। तो उसको हम उसको नेगेटिविटी में ले ही क्यों,
और उसमें अगर हम नेगेटिविटी में लेते हैं तो ये कर्म बंधन बन जाएगा। बाबा कहते कर्म बंधन मत बनाओ, कर्म संबंध बनाओ। ये कर्म का आपस में संबंध है, तो संबंध सुखदायी है, बंधन दुखदायी है। बंधन में ये होगा कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, फिर भी करना पड़ता है, परंतु हम ये नहीं सोचे, हम कहते क्यों नहीं करेंगे, ये भी हमारे भाई है, ये भी एक आत्मा है, तो इसीलिए बंधन नहीं लगता कर्म का हिसाब किताब। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है, तो आत्मा का तख्त है ये भ्रकुटी। तो आत्मिक दृष्टि पक्की चाहिए, जब भी किसी को देखो तो आत्मिक दृष्टि से उनकी भ्रकुटी पर देखो, आत्मिक दृष्टि पक्की चाहिए। ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं, ऐसे कहें, ये है नंबर वन सब्जेक्ट। इसमें अगर पास हो गए, बाबा कहते तो बाकी सब्जेक्ट्स में पास होना बड़ा सहज है। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे, क्योंकि आत्मिक दृष्टि है। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, क्योंकि बाबा बार बार हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि अभी घर जाना है वापस, तो सतो प्रधान होकर ही जाना है। इस तमो स्थिति में आत्मा वापस नहीं जा सकती है, तो बाबा की याद से सतो प्रधान बनेंगे, आत्मिक स्थिति से ही सतो प्रधान बनेंगे, पावन बनेंगे, तब वापस घर जा सकेंगे। आत्म अभिमानी बनने से ही हम सुखी, शांत और पवित्र बनते हैं। फिर एक दूसरी बहुत सुंदर पॉइंट है, बाबा आते ही एक बार हैं सारे साइकिल में, और आते हैं तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने, और कोई समय में वो नहीं आ सकते। अब बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, ये रजो प्रधान समय पर आए, अब परमात्मा उस समय नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा को तो तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाना, उस समय तो रजो प्रधान स्थिति है। जब बिल्कुल तमो स्थिति हो, प्रधान स्थिति हो तमो की भी, तब परमात्मा आए, और वे आते हैं दुनिया को थमाने के लिए। परिवर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि थमाना जरूर होगा, परिवर्तन का कार्य तो केवल परमात्मा का ही है। तो बाबा कहते हैं उनको आकर के नई दुनिया स्थापन करनी है, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करना ये परमात्मा का ही काम है, कैसे स्थापन करते वो भी क्लियर है, शिव बाबा ने सब बता दिया कैसे। सतयुग वही हेवन है जो स्थापन करते हैं। इस समय तो है ही रावण का राज्य, तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। एक चैलेंज है कि परमात्मा के सिवाय कोई भी मनुष्य आत्मा किसी की सदगति नहीं कर सकता। बाप ही सब कुछ करते हैं, इसलिए दुख में उनको ही याद किया जाता है। तो बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
देह होते हुए भी, देह सहित,
हाँ, देह सहित माना देह में हो, पर देह को भी तो भूलना है ना। तो देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मेरी एक शरण में आओ। आत्मा को शरण में जाना है, देह तो शरण में नहीं जाएगी ना, आत्मा को ही जाना है। छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेकिन अपना भी नहीं समझना है। ये तो प्रकृति की चीज है, यही धारण किया शरीर, यही हम छोड़ के चले जाएंगे, पर मैं आत्मा तो शिव बाबा की हूँ। इसीलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये बहुत ऊंची बात है, एक प्रकार का कंडीशन भी है और फिर बाप का वायदा भी है। तू मुझे याद कर, तो कंडीशन है कि अगर तुम मुझे याद करेंगे तो फिर वायदा है कि मैं तुम्हारे सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। पर वायदा तब निभाएंगे परमात्मा जब हम उनकी कंडीशन पूरी करेंगे।
बिल्कुल, और उन्हें उनकी कंडीशन यही है कि हम उन्हें याद करें। अब याद हम तभी करेंगे जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे।
ये हाँ, बहुत जरूरी है। इसीलिए परमात्मा को बार बार कहना पड़ता है कि अपने आप को आत्मा समझ, मुझे याद करो, इस मन को मेरे में लगाओ। तो मन को मेरे में लगाने के लिए पहले अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा में मन है, तभी मन अपने वश में रखेंगे और मन को परमात्मा में लगा सकेंगे। क्यों बाबा को बार बार ये कहना पड़ता है देह के सब धर्मों को छोड़? क्योंकि अब हम देह के धर्मों में फंस गए,
इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, हाँ,
फिर तेरे मेरे में फंस गए हैं। कई बार लगता है कि मनुष्य एक तो के दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। हम कहते रिस्पेक्ट तो बहुत ऊंची चीज है, चलो कई समय से नहीं दे सकते, अच्छा रिस्पेक्ट ठीक है मत दे, लेकिन टॉलरेट तो करो। टॉलरेंस भी तो बहुत जरूरी है। आज इंसान टॉलरेट भी नहीं कर पाता। अच्छा टॉलरेंस में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसका सहज उपाय है एक्सेप्ट, इट्स पार्ट ऑफ द ड्रामा। आप ड्रामा देखने जाते हो, अलग अलग एक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी एक अलग अलग बाई प्लॉट्स है इस ड्रामा के अंदर, अलग अलग एक्टिंग्स है, अलग अलग शाखाएं हैं, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो तुम्हारे सिर पर बहुत पापों का बोझा है, इसलिए भाई भाई की दृष्टि रखो, इसमें ही मेहनत है। भाई भाई की दृष्टि रखने में ही मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे लकी सितारों प्रति रूहानी बाप की याद प्यार और नमस्ते। बाबा अंत में नमस्ते करते हैं, याद प्यार देते हैं। फिर वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बहुत सुंदर है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करना,
क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं होता एक्चुअली अगर ये कहा जाता है।
हम मिसाल देते ना, जैसे देखो गुलाब का फूल, वो जिस मिट्टी में उगता है वो कितनी गंदी होती है, इतनी मानो बदबू वाली होती है, मैन्योर होता है, खाद होती है, गंदगी होती है, परंतु उसमें से भी वो खुशबूदार फूल बन जाता है। देखो, तो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बन। बेफिक्र बादशाह बनना है, फिक्र किस बात का करना है? जिस परवाह थी वो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो बाकी किसकी परवाह, इसीलिए चिंता की तो बात ही नहीं है। तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। फिर लास्ट में बाबा स्लोगन देते हैं, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। तो अपना रिकॉर्ड अगर ठीक रखना है तो सबको रिगार्ड दो।
बहुत सुंदर, तो इनफैक्ट अगर हम कहें तो आज बहुत से लोगों के कई बातों के सवाल जरूर जो जवाब है वो मिले होंगे श्री बहन आज की इस पूरी मुरली में, क्योंकि कई कई बातों को हमने जोड़ने की कोशिश की है। बाबा ने जो जो कहा है उसे हमने शामिल किया है। पहले तो यही कि आत्मिक दृष्टि रखते हुए अपनी सही पहचान रखते जाएं, सदा स्मरण में रहें, और दूसरी बात जो शांति का जो बात उन्होंने कही है कि विश्व शांति के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते जो कि पॉसिबल है। शांति का सही मतलब क्या हुआ, कि शांति का मतलब यही कि हम सिर्फ एक जगह बैठ जाएं और शांत होकर बैठ जाएं, या विचारों में शांत हो जाएं, क्योंकि थॉट प्रोसेस यहाँ पे है, जो ट्रैफिक चल रहा है उसे स्लो डाउन करना है। और जैसा कि भाई भाई को हर एक को जो दृष्टि की जो बात अगर हम देखते हैं श्री बहन की दृष्टि जो देनी है वो आत्मिक दृष्टि देंगे तभी वही सत्व प्रधान हमें स्थिति में लेकर जाएगी और नई दुनिया का निर्माण करने में सहायक होगी। तो आज की इस पूरी मुरली के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
मुरली आप तक पहुंचाने का हमारा यही मकसद है कि जो लोग नहीं जा पाते सेंटर में, या अगर आपको कुछ ऐसी बातें जो इंटरप्रेट आप चाहते हैं कि की जाए तो वो हम इसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी ऐसी बात जो जीवन में या इस ज्ञान से जुड़ी हुई आपके पास है, आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर में जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं। आप हमें भी ईमेल कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर आगे भी यूं ही चलता रहेगा। मुरली का ये प्रयास कि आप तक ये मुरली पहुंचे, बाबा के वो वचन, वो अमृत वाक्य, वो अमृत की बूंदे रोज जो हम तक पहुंचती हैं, हमें जीवन का सार देती हैं, वो आप तक यूं ही लगातार पहुंचता रहे, इसी प्रयास के साथ आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। विदा लेते हैं। ओम शांति।
Peace.